प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 82 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और प्रारंभ से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। विद्यालय के पास 82 वर्षों के अनुभव हैं। इस ज्ञान और योग का अध्ययन करने से नियमित अभ्यास करने से हमें अपने जीवन में जो मन की शांति मिली है, जो आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय आनंद और आध्यात्मिक शक्तियां मिली है, वो शांति सुख आनंद विश्व की सभी आत्माओं को भी प्राप्त हों, इस शुभ भावना से हम राजयोग के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और हमारे हर कार्यक्रम के प्रातः सत्रों में योग के ही सत्र होते हैं। राजयोग कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई शारीरिक आसन प्राणायाम की या रटने जपने की कोई क्रियाएं नहीं है। राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। यहाँ 1-2 घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहाँ जीवन को योगी जीवन बनाने का लक्ष्य है। इस योग का आधार, कोई शास्त्र, कोई मनुष्य गुरु या क्रिया नहीं है। इस योग का आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। हर सत्र में प्रथम ज्ञान दिया जाएगा और फिर अभ्यास कराया जाएगा। आपके इस कॉन्फ्रेंस का विषय भी यही है कि आध्यात्मिक ज्ञानोदय के द्वारा व्यापार में स्वर्णिम युग। तो आज के प्रथम सत्र से ही ईश्वरीय ज्ञान के मूल सत्यों को स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से हम समझेंगे। प्रथम योग शब्द का अर्थ हम समझ लें कि जैसे वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना, सेपरेशन। योग मीन्स मिलन मनाना, संबंध जोड़ना, कनेक्शन करना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का, परमात्मा से मिलन। तो हमारे पास तीन बातों का मूल ज्ञान होना जरूरी है। प्रथम है, हम खुद साधक कौन है, योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं, हमारा अपना वास्तविक परिचय क्या है। दूसरा है साध्य, जहां मन और बुद्धि लगाने हैं वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, जिससे योग लगाना है। और तीसरा है साधना, किस विधि से, किस पद्धति से अभ्यास करना है। आज के इस प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे, जहां से हम इस अंतर यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, हम खुद कौन हैं। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और कहां हमें जाना है। जो परिचय हम एक दो को बताते हैं वो परिचय तो बदलता रहता है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने काव्य में कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है, हम आपस में मिलते हैं, परिचित होते हैं, आप कौन हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं। हम अपना दैहिक दुनियावी परिचय बताते हैं। हमारी सूक्ष्म स्मृति में भी यही रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। स्पष्ट है हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए हम शरीर भान में रहते हैं। आप अपने आप को चेक करिए, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक जो कर्म हम करते हैं, कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं मिस्टर फलाना हूं, पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं सुंदर हूं, साधारण हूं, काला हूं, गोरा हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं। शरीर के नाम रूप रंग आयु का भान रहता है। कुछ एक कर्म व्यवहार संबंधों के अभिमान में आकर हम करते हैं, मैं इनका पति हूं, पता है मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है, इसलिए हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। कि मैं ऑफिसर हूँ, मिनिस्टर हूँ, उद्योगपति हूँ, शिक्षक हूँ, डॉक्टर हूँ। अपने प्रोफेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हमारी पर्सनालिटी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग बनती जा रही है। और अपने आप को चेक करेंगे, गहराई से सोचेंगे, जाति की कॉन्शियसनेस रहती है। कि हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, राजपूत हैं, जाति का भान रहता है, धर्म का अभिमान रहता है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, इवन भाषा की कॉन्शियसनेस, हम तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, बंगाली हैं, भाषा का अभिमान, नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं अमेरिकन हूँ, जैपनीज हूँ, चाइनीज हूँ। हम कह सकते हैं हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। इसलिए हमारा जीवन देहाभिमान युक्त सांसारिक बन गया। प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब आप लगाइए, हमारा मैक्सिमम टाइम मनी एनर्जी देह के पीछे दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे, पारिवारिक सामाजिक कार्यों के पीछे ही खर्च हो रहा है। प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब आप लगाइए, रोज कितना घंटा हम सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं, 7-8 घंटा रोज हम सोते हैं, रोज नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, रोज हम भोजन करते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं, रोज कितनी बार खाते, कहने के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर सारा दिन कुछ न कुछ हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कम से कम 12 घंटे 50% टाइम खाने पीने सोने नहाने धोने में ही खर्च होता है। आधी जिंदगी खाने पीने सोने के पीछे खर्च होती है, बाकी रहे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे, घर कारोबार संभालने के पीछे कितने घंटे खर्च होते हैं, रोज 8-10 घंटे नौकरी धंधे के पीछे, घर काम के पीछे खर्च होता है। 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होता है, और वो नौकरी धंधा भी हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? पेट के लिए। अक्सर लोग कहते हैं पेट के लिए सब करना पड़ता है, शरीर निर्वाह, पेट पोषण, जीवन आजीविका के लिए करना पड़ता है। अब बाकी रहे 2-3 घंटे पारिवारिक कार्यों में, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल के पीछे खर्च होता है। अब देखिए, ये हमारी रोज की जिंदगी है, ये हमारी रोज की दिनचर्या है। हमारी रोज की दिनचर्या को देखते हुए स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन सांसारिक देहाभिमान युक्त बन गया है, हम भोगवादी भौतिकवादी बन गए हैं। जीवन के ऐसे स्वरूप में कोई हमें आत्मकल्याण, सेल्फ डेवलपमेंट, स्व उन्नति के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं तो अक्सर हम क्या जवाब देते, क्या जवाब देते? टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। सोच लेते हैं रिटायर्ड होंगे, बूढ़े होंगे, फिर करेंगे। यहां हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रहते हैं, देहाभिमान में जीवन जीते हैं। क्या हम शरीर हैं? सोचिए, क्या मैं शरीर हूं? जबकि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है, चित्र में बताया है कि शरीर तो हड्डी, मांस, चमड़ी, लहू से बना हुआ एक ढांचा है। दूसरे शब्दों में कहें, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं 5 तत्वों का बना शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया। सरल शब्दों में हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ हम देखते हैं, एक छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीन, संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ है, प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, आखिर टूट फूट कर खत्म हो जाती है। ऐसे शरीर भी उन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है। हरेक खुद अपने शरीर के साक्षी हैं, बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर, हमारे अपने देखते देखते कितना बदलता जा रहा है। आखिर शरीर खत्म होता है, मनुष्यात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मनुष्य शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्य आत्मा, जीवात्मा कहा जाता है। मानव शरीर के बारे में हम जानते हैं क्योंकि शरीर स्थूल है, इन आंखों से हम देख सकते हैं, इसलिए शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है, आखिरकार नाशवंत है। परंतु शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति है जिसको हम बीइंग पार्ट कहते हैं, लिविंग एंटिटी, कॉन्शियंट एनर्जी कहते हैं। जब तक चैतन्य शक्ति है हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, अनुभव करते हैं। जिस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर डेड हो जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है। हमारे एक दो के साथ जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, हम तुरंत क्या कहने लगते हैं कि जल्दी सबको सूचित करो, जल्दी तैयारी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो। हमारे एक दो के साथ संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको साइकोलॉजी में साइकी कहा जाता है, मेडिकल साइंस जिसको कॉन्शियस कहता है, कॉन्शियंट एनर्जी कहता है। हम सहज शब्दों में आत्मा, रूह, सोल कहते हैं। भाइयों और बहनों, मनुष्यात्मा शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए। पांच तत्वों से बना मानव शरीर और इस शरीर को धारण करने वाली, चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आपसे ये है, अब आप सोच कर बताइए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द हम बोलते हैं? जीवन में मैक्सिमम यूज होने वाला शब्द कौन सा है? मैं। क्या हमें स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है? देखने में तो शरीर आ रहा है, देखने में चीज आती है, वस्तु आती है, देखने में तो लगता है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, हीटर गर्मी दे रहा है, पंखा चल रहा है, देखने में तो चीज आ रही है, पर सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है जो बल्ब द्वारा प्रकाश के रूप में, ट्यूब द्वारा लाइट के रूप में, हीटर द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होता है। देखने में मशीन चल रही है, पर सत्यता यह है कि इलेक्ट्रिक पावर मशीन को चला रहा है। देखने में पावर नहीं आता, देखने में चीज वस्तु आती है, भल देखने में शरीर आ रहा है, पर सत्य ये है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये विचार करना चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती है, मैं सोचती हूं, विचार करती हूं, मुझे इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है, ये चैतन्यता की निशानी। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं है, जो प्रोग्रामिंग हम डालते हैं चीजों में तब वो चलती दिखाई देती है। हम स्वयं कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, कोई अच्छा कार्य हम करते हैं, भल कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, फिर भी हमें खुशी होती है, संतुष्टता होती है। कोई गलत कार्य हम करते हैं, किसी को पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, दिल खाता है, चिंता भय होता है, अनुभव होता है ना? हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, दया आती है, रहम उत्पन्न होता है, किसी के दुख दर्द कष्ट मुसीबत को देख आपको जरा भी सहानुभूति ना हो, हमदर्दी ना हो, आपको जरा भी दया रहम ना आता हूं, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है। हमदर्दी, सहानुभूति, दया रहम चैतन्यता के निशान। सिद्ध है हम चैतन्य शक्ति हैं, हम आत्मा हैं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं और मेरा ग्रामेटिकली भी अलग अलग है। हमें स्वयं के बारे में ये सत्य स्पष्ट हो कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है। सुनने में ये बात बड़ी साधारण आपको लगती होंगी, आप सोचेंगे कि हम ये जानते हैं, क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ते हैं, किसी की डेथ होती है, हम श्रद्धांजलि देते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सद्गति हो। शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन, गई कौन, आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है ना, शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, समझते हैं? नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि जीवन भर खुद को शरीर ही समझते रहते हैं। शरीर छोड़कर जाने पर कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले, जीते जी अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, शरीर भान में ही रहते। भल देखने में नहीं आता है, क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है, अनुभव होता है। कोई शक्ति चली गई, हम कहते हैं लाइट हैज गोन, दीवा बुझ गया, प्राण चले गए। इसलिए भल सुनने में ये साधारण लग रहा हो, लेकिन भाइयों और बहनों, ये मूल सत्य है जिसको हम भूल चुके हैं और बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। अब हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते सोचते बोलते हर कर्म करते हुए ये अवेयरनेस रखनी है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मेरे पांव, मेरे हाथ, मेरा सिर, मेरा पेट, मैं शरीर नहीं, मैं हाथ, मैं पांव, मैं पेट नहीं। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा समझना, राइट कॉन्शियसनेस रखना, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए हम इन आंखों से देख नहीं सकते, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म आकार बिंदु को ही कहेंगे ना कि ट्रायंगल, स्क्वायर, अष्टकोण, षटकोण को कहेंगे, स्मॉलेस्ट फिगर बिंदु को कहते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, चैतन्य है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर धारण करने के बाद मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाते हैं, क्योंकि मस्तक ब्रेन शरीर की मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। बॉडी की मेजर सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल होती है। हम कह सकते हैं आत्मा क्योंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक लगाते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं। यहाँ कोई थर्ड फिजिकल आई नहीं है, आत्मा थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती, आत्मज्ञान ही तीसरा नेत्र है। जब तक स्वयं का सत्य ज्ञान नहीं, जीवन का यथार्थ लक्ष्य नहीं बन पाता है, जीवन जीने का सही मार्ग नहीं हो पाता है। भक्ति में हम तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर हम अपने आप को आत्मा समझते नहीं हैं, देहभान में ही रहते हैं। यहाँ हम तिलक नहीं करते हैं, यहाँ हम खुद को आत्मा समझते हैं। हरेक को आत्मा नजर से देखते हैं, इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है स्वयं को आत्मा समझना। हरेक को आत्मा दृष्टि से देखना, इस एक सत्य को भूल जाने के कारण आप देखिए संसार में कितने भेदभाव है, कितने डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, कितना बड़ा भेदभाव घर घर में है, क्योंकि हम देह दृष्टि से देखते हैं। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये ब्रदरहुड, ये विश्व बंधुत्व भाईचारा आत्मभान से हो सकता है, देह अभिमान से नहीं हो सकता। इसलिए हमें हरेक को रूहानी नजर से देखना। देह अभिमान के कारण ही जाति के, भाषा के, आयु के, प्रांत के, नेशनलिटी के, धर्म के, आप देखिए कितने भेदभाव है। इसलिए आत्मचिंतन करना सेल्फ रियलाइजेशन राजयोग की पहली प्रैक्टिस है। हम कंपेयर कर सकते हैं आत्मा और शरीर के बीच। हमें स्पष्ट रहे शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा शक्ति है। शरीर एक मोटर कार के समान है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति शरीर को चलाने वाली ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर दिन रात कार चलाता है पर वो अपने आप को मोटर नहीं समझता। उससे क्लैरिटी है मोटर कार अलग है, मैं ड्राइवर अलग। हमें भी स्पष्ट रहे हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, कान द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं पर हम शरीर नहीं है। हम इस शरीर से अलग आत्मा शक्ति है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। शरीर एक वस्त्र ड्रेस के समान है, मैं आत्मा उससे धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर। शरीर एक रथ है, मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली रथवान रथी हूँ। आत्मा को रथी कहा जाता है। इसलिए आप देखिए जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं हम कहते हैं फलाने की अर्थी उठी। अर्थी मीन्स जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे आत्मा माना क्या है। शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, आंख नाक कान मुख हाथ, पंच कर्मेंद्रिय कहा जाता है। शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार। आत्मा मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह है। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। मन शब्द से आप परिचित हैं। अक्सर लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कंप्लेन करते हैं, मन भटक जाता है। हम बैठते हैं परमात्मा को याद करने, मन भटक जाता है। अब बताइए, मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन भटकता है माने क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो निकल कर भटकती। जब हम कहते हैं मेरा मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, मीन्स क्या होता है? क्या होता है? मन भटकता है माना क्या होता है? विचार आते हैं, बैठे हैं कोई एक सब्जेक्ट पर सोचने के लिए और अन्य अनेक विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मन भटक रहा। मन इस बात का चिंतन करने में एकाग्र नहीं हो रहा। आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। सिंपल बात, आत्मा की संकल्प शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना। और अब तक खुद को देह समझते रहे, बॉडी कॉन्शियस रहे, जिस देह भी मन के कारण हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिक किया है। हर एक अपने आप को देखिए, अक्सर कौन सी बातें आप सोचते रहते, अक्सर कौन से विचार आपको आते रहते, कौन से? वही नौकरी, धंधा, घर, गृहस्थी, समाज, संसार, शरीर, परिवार, वही बातें सोचते रहते। हमने अब तक मन का अधिक उपयोग इन्हीं चिंतनों में किया है, इसलिए वही विचार हमें आते रहते हैं। अब हमने ये सत्य जाना है कि हम आत्मा हैं। अब हमें मन का उपयोग आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में करना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। इसलिए हम विचार शून्य नहीं हो सकते हैं। सोचना ही चैतन्यता के निशाने है, विचार ही ना आवे इसका अर्थ तो जड़ बन जाता है ना, डेड हो जाता है। हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं, विचार शून्य नहीं हो सकते हैं, हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं। नेगेटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव में बदल सकते हैं। वेस्ट सोचते रहते हैं, आवश्यक चिंतन में बदल सकते हैं। इसलिए राजयोग में हम मन को मारते नहीं हैं, सुधारते हैं, समझाते हैं। शारीरिक हट क्रियाओं से मन का दमन नहीं करना है, हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना है। विचार अनेक आते हैं, एक मिनट शांत बैठेंगे, अभी अगर एक मिनट में आपको शांत बिठाऊं, आपको कई विचार मन में आएंगे कि ये क्लास पूरा होगा फिर हम चाय पीने जाएंगे, नाश्ता करने जाएंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कई विचार आ सकते हैं, पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। हम निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम ये करेंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति को, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है मन के विचारों को अंडरस्टैंड करना, सिलेक्ट करना, चूज करना, डिसाइड करना, ये बुद्धि का कार्य है। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। पर आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट बन गई है, बुद्धि पतित बन गई है, कमजोर बन गई है। इसलिए बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम निर्णय करते हैं कि हम शांति से जिएंगे, प्रेम से चलेंगे, मिलके काम करेंगे। हम निर्णय करते हैं पर फिर कहते हैं क्या करें, स्वभाव ऐसा है, आदत पड़ गई है, गुस्सा आ जाता है, मुख से निकल गया। ये शब्द बताते हैं बुद्धि कमजोर बन गई है। इसलिए जीवन का स्वरूप देखिए, जो नहीं करना चाहिए वो बार बार करते रहते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि पतित भ्रष्ट बन गई। अनेक बार सत्य समझाने पर भी कोई नहीं समझता है तो हम कहते हैं ना, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। आत्मा की निर्णय शक्ति को बुद्धि कहते हैं, और अगर हम बुद्धि को शुद्ध शक्तिशाली दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। परमात्मा ही वो परम चैतन्य शक्ति है जो सदा पावन है, ऑलमाइटी है। उनकी याद से बुद्धि शुद्ध शक्तिशाली हो सकती। तभी तो हम गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। क्यों हम परमात्मा को कहते हैं? जरूर परमात्मा की याद से कभी बुद्धि शुद्ध हुई है, सत्य हुई है, तब तो हम कहते हैं। क्योंकि अब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, पिता परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, तो बुद्धि योग भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव कर्ता आत्मा पर पड़ता है। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है। आप अच्छे कर्म करो, साधारण करो, या बुरे कर्म करो, खुलेआम करो या गुफा में छिप के करो, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है। कर्म के प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहा जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। जो कर्म बार 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 आप करते रहते हैं वो आदत हैबिट्स बन जाती है, उसे हम स्वभाव संस्कार कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं, सरल शब्द में संस्कार कहा जाता है। हम 2 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार गुस्सा करते हैं, स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। हम 2 बार, 10 बार, 20 बार झूठ बोलते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती। फिर अनावश्यक छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहते, आदत पड़ गई ना। छोटी 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 चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। और हम सब जानते हैं आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती है, पर क्या साथ ले जाती है? किए हुए कर्मों का हिसाब संस्कार के रूप में आत्मा में संचित होता है, आत्मा संस्कार को लेकर जाती है। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। पर जब कर्म करते हैं हम अटेंशन नहीं देते हैं। जब कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते हैं, मन ही मन में कुड़ते रहते हैं। हम घंटों तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, हम घंटों गलत कर्मों में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। जब कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, जब कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों हो रही। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, फिर सोचने बैठते हैं। और स्वदर्श आत्मदर्शन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास नहीं है, इसलिए फिर दूसरों को दोषित करते रहते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम आते हैं, ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये मुझे दुख देते हैं, लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, फिर दूसरों को दूषित करते रहते। सत्यता तो ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। इसलिए देखिए, हरेक अपने आप को देखिए, हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं, हरेक की पर्सनालिटी स्पॉइल हो गई, दूसरों के लिए बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं कि फलाना बहुत अभिमानी है, बहुत झूठा है, बहुत गुस्सेल है, बहुत प्रपंची है, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, पर खुद को देखना है, अपने आप को देखना है। हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं। आप देखिए, कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, कोई अभिमान के वश है। हम हरेक दुखी अशांत पतित बन गए। आपस में झूठा अभिमान है, इसलिए आपस में हम महसूस नहीं करते हैं। कोई हमारी एक भूल बताते हैं, अभिमान के कारण हम उनकी चार भूल बताते हैं। झूठा अभिमान होने के कारण हम खुद के कमजोरियों को रियलाइज नहीं करते हैं। पर आप देखिए, जब हम कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, कोई महान आत्माओं से मिलते हैं, तब हम महसूस करते हैं। इसलिए आरती में, भजनों में, प्रार्थना में गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं ना, तब हम महसूस करते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपटी हूं। बेशक हम सभी आत्माएं कम ज्यादा मात्रा में पतित भ्रष्ट दुखी अशांत बन गए हैं, पर एक और सत्य यहां हमें समझना है कि हम दुखी अशांत पतित भ्रष्ट बन गए हैं, मीन्स पहले हम ऐसे नहीं थे, पहले हम ऐसे नहीं थे। हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये बिगड़ गए, मीन्स पहले अच्छे थे। दुनिया भ्रष्ट हो गई, मीन्स पहले अच्छी थी। हम हरेक आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, विकार वासना नहीं। हमें सच्चरित्रता अच्छी लगती है, बदचलन नहीं। क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध सत्य पवित्र है। ये हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज हैं। चित्र में बताया है हरेक आत्मा का असली स्वभाव ये 7 गुण हैं। इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए, न कि अशांति। क्या चाहिए हरेक को? शांति चाहिए या अशांति चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनली शांत हैं। इसलिए आप देखिए, देहाभिमान में आकर गुस्सा करते हैं, पर आखिर गुस्सा करके भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी शांति है। पानी का असली गुण शीतलता है। अग्नि के संग पानी गर्म होने लगता है, उबलने लगता है। अग्नि से हटा दो, फिर ठंडा होने लगता है। पानी का असली गुण ठंडापन है, शीतलता है। हम आत्माओं का असली गुण शांति है। जब हम आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आते हैं, तब गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि अब मिजाज शांत हुआ, अब हम आपसे बात करें, कोई 24 आवर्स गुस्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है। हमें जीवन में सुख चाहिए न कि दुख। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, हमारी घृणा करे नफरत करे वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमें सब खुश रहे अच्छा लगता है, आत्मा आनंद स्वरूप है। हम ज्ञान पाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, कमजोर कायर नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं शक्ति है। ये हमारा असली स्वभाव है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। इसलिए जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, ये गुण इमर्ज होंगे, खुद में अनुभव होंगे। इसलिए कहते हैं ना, शांति के लिए बाहर भटकना नहीं है, भीतर जाना है। भीतर जाना माना आत्मस्थ होना है, सोल कॉन्शियस। हमें स्पष्ट रहे शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म है, सुख साधनों में नहीं है। हम धन कमाते हैं, साधन बसाते हैं, सुविधाएं होती है, पर इन सुविधाओं का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो मुझे अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता। आनंद फिल्मों में होटलों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। मुझे आनंद नहीं है कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, मुझे मजा नहीं आता है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे रोज के भोजन में भी खुशी है। इसलिए अपनी इस रियलिटी को अब याद करना है। हम क्या बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि मैं कहता हूँ ना मेरा स्वभाव गुस्सेल है, मैं तो कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर आप यही सोचेंगे, यही कहेंगे, तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे। अब आप ये सोचिए, ये रिपीट करिए, रिवाइज करिए, महसूस करिए कि मैं शांत आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। आप अनुभव करके देखिए, अगर आपको ये स्मृति है कि मैं आत्मा शांत हूं, शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है, कोई कितना भी गुस्सा करेगा आपको गुस्सा नहीं आएगा। और लास्ट बात, हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, इन आंखों से जो संसार आप देख रहे हैं वो साकार लोक हैं, फिजिकल वर्ल्ड हैं, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड हैं। ये पांच तत्वों से बनी फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है। यहां हम आत्मा आकर पांच तत्वों के बने शरीर को धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। इसलिए ये दुनिया हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है, संसार रैन बसेरा कहते हैं ना। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये पता है अकेले आए हैं, अकेले जाना है, पर कहां से आए हैं, कहां जाना है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, हम आत्माओं का असली घर परम धाम, जिसे ब्रह्मलोक परलोक मुक्ति धाम शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। हम ज्योति बिंदु आत्माएं वहां निवास करती हैं, वहां शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है, सोल वर्ल्ड, रूहों की दुनिया आलमे अरवाह कहते हैं, वो साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है, यहां हम आवाज करते हैं। इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य याद रहे कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, मेरा असली घर परम धाम है, तो हम इस दुनिया में रहते भी अनासक्त न्यारे डिटैच रह सकते हैं। इस शरीर में रहते अगर ये स्मृति हम रखें कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, शरीर से अलग हूं, तो हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए भी हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, देहभान से न्यारे रह सकते हैं। ये है राजयोग का पहला अभ्यास, सोल कॉन्शियस बनना। तो हम पांच मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठे ताकि आप थके नहीं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेकर न बैठे, साइड में रख दीजिए। जितना हो सके एक दो से अलग अलग होकर बैठें, टच करके न बैठें। काफी कुर्सियां हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, अलग अलग होकर बैठिए। आंखें नेचुरल खुली रहने दें, आंख बंद करके बैठेंगे तो सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है चिंतन करने का, इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए। आज मैं आपको अभ्यास करा रही हूँ, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। इस आत्म स्मृति के साथ हमें बैठना है, आत्म दृष्टि से देखते हुए स्वचिंतन का अभ्यास करना है। यह आपका नया अभ्यास है, इसलिए हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे स्वचिंतन करना है मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी, जो विचार मैं आपको दूं वो मन में रिवाइज करना है। मुख से बोलना नहीं है, मन में रिवाइज करना है, अर्थ समझना है, महसूस करना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाइए। साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच त्रिकुटी में अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मैं आत्मा शरीर धारण कर इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूँ, कर्म फल भोग रही हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी परे परम धाम है, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा इस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। यहाँ मैं आत्मा शरीर और प्रकृति के बंधन से मुक्त हूँ, अपने असली ज्योति बिंदु स्वरूप में हूँ। अपने असली स्वरूप से मैं आत्मा शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं शांत और शीतल आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। मैं नित्य और सत्य हूँ। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे स्पष्ट है शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। मैं आत्मा शाश्वत सनातन हूँ। मुझ में ही शांति सुख आनंद प्रेम समाया हुआ है। मैं आत्मा इन गुणों की स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य ओम शांति।